आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भरद्वाज और मैं आपके साथ आपकी 9th क्लास की साइंस बुक को डिस्कस करती हूँ। सो आज हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 5.2.2 ऑन पेज नंबर 61। लास्ट ऑडियो में हमने इंटेक्स क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया था, अभी हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक और रिजिड आउटर कवरिंग पाई जाती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये केवल प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशंस कि प्लांट सेल किससे मिलकर बनी हुई है। सो प्लांट सेल वॉल, सेल्यूलोज एक सब्सटेंस है जिससे मिलकर बनी है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो इन प्लांट सेल्स whenever it is put in a hypotonic solution, then it will lose its water content by the process of osmosis, as a result of which shrinkage or contraction of the contents of cell occurs. जब भी हम living plant cell को hypotonic solution के अंदर place करेंगे तो उस cell का shrinkage हो जाएगा, जिसके कारण उसके कंटेंट्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो भी सिकुड़ जाएंगे। इस फिनोमेनन को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म प्लाज्मोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है। तो प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेल वॉल प्लांट को जब प्लेस किया जाता है किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो ऑस्मोसिस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो उसके कंटेंट्स हैं सेल के वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अवे फ्रॉम द सेल वॉल वो मूव करने लगते हैं। यही प्लाज्मोलाइसिस है। इसे समझने के लिए लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 5.6 गिवन ऑन पेज नंबर 61। माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। आप एक पील लीजिए रियो लीफ। सो कॉमनली इसको ऑयस्टर प्लांट कहते हैं या बोट ऑफ मॉसेस कहते हैं, मे बी आपके स्कूल में अगर ये अवेलेबल हो तो। उसका आपको स्लाइड प्रिपेयर करना है एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। Wait for a minute and observe under microscope again. What do we see? Now, you have to perform this activity. In this activity, you should have a rio leaf. इस रियो लीफ का आपको स्लाइड प्रिपेयर करना है और इसको अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप आपको ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स हैं, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। उनके अंदर एक पिगमेंट है विच इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर्ड है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। सो अब क्या करना है कि इसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन शुगर का या सॉल्ट का डाल देना है इस माउंटेड लीफ के ऊपर। कुछ मिनट्स के लिए आपको वेट करना है एंड अगेन इसको ऑब्जर्व करना है अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप। आप क्या देखते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए. नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. दिस किल्स द सेल्स. देन माउंट वन लीव ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीव ऑन द स्लाइड. वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन. वॉट डू वी फाइंड? डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर्स नाउ? सो अगेन क्या करना है कि रियो लीव्स को बॉइलिंग वाटर के अंदर डालना है कुछ मिनट के लिए, जिसके कारण क्या होगा कि उसके सेल्स किल हो जाएंगे. और अगेन उसका स्लाइड बनाइए और उसके ऊपर फिर से एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालिए. दोनों ही केसेस में उसको ऑब्जर्व कीजिए, कुछ मिनट के लिए वेट कीजिए और उसको अगेन ऑब्जर्व कीजिए. आपको क्या ऑब्जर्वेशन आती है उसको नोट डाउन कीजिए. आप यहाँ पे एक चीज जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि सेकेंड कंडीशन के अंदर जो आपने किया उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस हुआ है या नहीं. ठीक है. What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. ऐसा लगता है इस एक्टिविटी को करने के बाद कि लिविंग सेल्स के अंदर ही केवल ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, डेड सेल्स के अंदर नहीं. सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डायल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. सेल वॉल क्या करता है? परमिट करता है सेल्स के, जो प्लांट के सेल्स हैं, फंजाई के सेल्स हैं, बैक्टीरिया के सेल्स हैं, कि वो डायल्यूट एक्सटर्नल मीडिया में भी अपने आप को बनाए रखे. इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. ऐसे मीडिया के अंदर सेल्स क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा पानी को गेन करते हैं, जिसके कारण द सेल्स स्वेल बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा और वो जो उसकी सेल वॉल है उस पर प्रेशर डालेगा. द वॉल एग्जर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल. बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल. सो उसके पास सेल वॉल होती है और उस सेल वॉल पे वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, और जितना प्रेशर वो उस पर एग्जर्ट करता है उतना ही प्रेशर वो वॉल उसके ऊपर एग्जर्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऐसा सेल ना मोर रिजाइलेंट हो जाता है, और मोर रिजाइलेंट होने के कारण वो ग्रेटर चेंजेस को भी विदस्टैंड कर सकता है. सराउंडिंग मीडियम के अंदर जो भयंकर से भयंकर स्थिति हो जाएगी उसको भी वो विदस्टैंड कर सकता है, जबकि एक एनिमल सेल नहीं कर सकता. सो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जिसके कारण वो ज्यादा रेजिलेंट होते हैं. सो सेल वॉल कंप्लीट हुआ, आप समझ गए होंगे सेल वॉल को. नाउ न्यूक्लियस 5.2.3 न्यूक्लियस. रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड. वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील. व्हाई? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. So basically iodine solution यहाँ दिया है, पर हमने saffron solution डाला था. आपने याद करो कि हमने onion peel को prepare करके, उसका slide prepare करके उसको observe किया था और cells को देखा था. क्या होता अगर हम उसके ऊपर वो iodine solution नहीं डालते? एक बार try कीजिए और उसके बीच में क्या difference आता है दोनों observations में, उसको differentiate कीजिए. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get even the color? जब हम iodine solution को डालते हैं उस प्याज के छिलके पे, तो क्या उसके जितने भी cells हैं वो evenly colored, I mean सबका जो color है वो even है? According to their chemical composition, different regions of cells get colored differentially. Chemical composition जो है different different regions का cells के अंदर, उसी के अनुसार वो differentially colored होते हैं. Some regions appear darker than other regions. कुछ जो regions हैं वो कुछ darker हैं, कुछ गहरे हैं. Apart from iodine solution, we could also use saffron solution or methylene blue solution to stain the cells. So ये कुछ dyes हैं, जैसे कि iodine solution है, saffron solution है, methylene blue dye है. इनको हम staining के लिए use करते हैं, कि staining इसलिए करते हैं ताकि हम microscope के under उनको observe कर सकें. Basically वो colorless होते हैं, that's why हम उन्हें colouring कंट्रास्ट कलरिंग मीडियम देते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्जर्व देम इजीली. वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल्स फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी. अब हमने अनियन सेल को देखा है, अब हम अपने बॉडी के सेल्स को देखेंगे. आप सोच रहे होंगे, यू मे बी वंडरिंग कि ऐसा क्या करेंगे. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी 5.7 गिवन ऑन पेज नंबर 61. लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट. एक ग्लास स्लाइड लीजिए और उस पर एक ड्रॉप पानी डालिए. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक. आइसक्रीम स्पून लीजिए और अपने गाल का जो अंदर वाला हिस्सा है, द मस्क्यूलर पार्ट, उससे उसकी स्क्रैपिंग कीजिए. डज एनी मटीरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? अकॉर्डिंग टू मी कोई भी मटीरियल नहीं आएगा उस स्पून पे. विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटीरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड कैप रेडी फॉर यूज. बहुत ज्यादा नहीं उसके ऊपर आ पाता है, बट आपके एक्टिविटी में लिखा है तो आप उसको परफॉर्म कीजिए. और जब उस पे स्पून पे कुछ आ जाए तो किसी नीडल से उसको स्क्रैप कर लीजिए. ऐसा नहीं करना है कि आपको नीडल से अपना ही चीक स्क्रैप करना है, बल्कि एक आइसक्रीम स्पून से उसको स्क्रैप करना है. अगर आइसक्रीम स्पून अवेलेबल नहीं है तो जनरल स्पून होती है, आप उससे भी स्क्रैप करें, पर आप उसको बहुत जेंटली करें, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है. और जो ये मटेरियल आपको मिला है उसको एक ग्लास स्लाइड पर डाल दीजिए एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड कैप रेडी फॉर दिस. टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू डाई सोल्यूशन ऑन इट. नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप. अब उसको कंट्रास्टिंग मीडियम देने के लिए आप उसमें मिथाइलिन ब्लू डाल दीजिए और अब वो रेडी हो गया है ऑब्जर्वेशन के लिए. टू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट. हमेशा जब भी स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं तो उसको दूसरी स्लाइड से कवर करते हैं, सो दैट हमारा जो भी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो खराब ना हो. What do we observe? What is the shape of cells we see? Draw it on the observation sheet. अब आपने जो भी observations देखे, जो भी आपको appearances दिखाई दिए, उनको एक observation sheet के ऊपर draw कीजिए. Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? So जो अभी आपने observations देखे उसके अंदर कुछ ऐसा गहरे रंगों का spherical या oval डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वही स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन ऑनियन पील सेल्स? अगर आपने नोटिस किया हो ऑनियन पील सेल्स को, तो कुछ इसी प्रकार के सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपको ऑनियन पील के अंदर भी दिखाई दिए थे. द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के अंदर एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.4. सो न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड होती है स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स, कुछ छेद्र होते हैं जो कि अलाउ करते हैं मटेरियल्स का ट्रांसफर न्यूक्लियस से बाहर की तरफ. न्यूक्लियस क्योंकि सेल के अंदर है, दैट्स वाई न्यूक्लियस से जो भी आदान प्रदान होगा वो सेल के अंतर्गत ही होगा, मीन्स सेल के अंदर ही होगा. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर तक ही न्यूक्लियस अपने सब्सटेंसेस को भेज सकता है. अब जो साइटोप्लाज्म है उसको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं. द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज rod shaped structures only when the cell is about to divide. Nucleus के अंदर chromosomes होते हैं जो कि visible हैं, कैसे? rod shaped structures के form. जब भी cell divide होगा तो ये जो rod shaped structures हैं ये visible हो जाते हैं. Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. DNA is deoxyribo न्यूक्लिक एसिड. सो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जो कि इनहेरिटेंस वंशानुगति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं. मींस जेनेटिक्स में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि इनके अंदर क्या है, डीएनए है. और डीएनए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए. तभी जो पेरेंट्स हैं या उनके जो डॉटर मतलब बच्चे हैं, जो उनके बच्चे होते हैं या उनकी ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो इसी वजह से कुछ सिमिलैरिटीज के साथ पैदा होती हैं. सो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. जो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि सेल्स को कंस्ट्रक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, और जो जीन्स डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट्स काम करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उन्हें कहा जाता है जीन्स। सो प्लीज अंडरलाइन डीएनए एंड जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। हेयर यू हैव लर्न थ्री न्यू टर्म्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. कोई ऐसा cell जो अभी divide नहीं हो रहा है, जिसके अंदर cell division नहीं हो रहा है, उसके अंदर ये DNA chromatin material के तरह present होता है. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. ये जो होता है chromatin material, अगर इसको observe किया जाता है nucleus के अंदर, तो ये ऐसा होता है जैसे जब आप पतंग उड़ाते हैं और उसका मांजा जो होता है, द थ्रेड यू यूज, उसका क्या होता है, वो टैंगल्ड हो जाता है। तो उसी तरीके से कुछ ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जब भी सेल डिविजन होगा या हो रहा होगा किसी सेल के अंदर, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. जो nucleus है वो एक central role play करती है cellular reproduction, और the process by which a single cell divides and forms two new cells, इसको कहा जाएगा reproduction. Reproduction क्या है? जब भी किसी single cell से division के बाद दो नए cells बनते हैं तो उसको reproduction कहा जाएगा। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. So, ये काफी important role play करता है cell division की आगे जाके वो cell क्या activity perform करेगा और external environment पे कैसे survive करेगा. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, उनके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत पुअरली डिफाइंड है, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सच एन अनआइडेंटिफाइड न्यूक्लियस, अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियर। और इस प्रकार की जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केवल न्यूक्लिक एसिड है लाइक डीएनए, उनको कहा जाएगा न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिजम्स whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes। और कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें कहा जाता है prokaryotes। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मीन्स कैरियन और न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट क्या हुए, जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मींस उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और ऐसी ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उनको कहा जाएगा यूकैरियोट्स। सो ये डिफरेंस पूछा जाता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, इसलिए प्लीज आप इसे मार्क कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स, सी फिगर 5.4, ऑल्सो लैक most of the other cytoplasmic organelles. जो prokaryotic cells होते हैं उसके अंदर कई सारे cytoplasmic organelles भी नहीं होते। Please refer to figure 5.4. A prokaryotic cell is being presented. आप देख सकते हैं कि उसके अंदर nucleoid है, means उसके अंदर जो है वो nucleic acid है, but एक defined nucleus नहीं है। Cell wall है, plasma membrane है और ribosomes है। So many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. कुछ ऐसे vital जो functions हैं वो cell के, यानी prokaryotic cells के अंदर जो poorly organized parts हैं cytoplasm के अंदर वो perform करते हैं। The chlorophyll in the photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures, but not with plastids as in eukaryotic cells. तो जो क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होती हैं लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको कहा जाता है प्लास्टिड्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक साइटोप्लाज्म, क्योंकि अभी हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, अब हमें उन्हीं को ही जानना है। 5.2.4 पेज नंबर 62 साइटोप्लाज्म। When we look at the temporary mounds of the onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up very little skin. It is called the cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. सो इन दिस पैराग्राफ ये कहा गया है कि जब भी हम और जो अभी टेम्परेरी माउंड हमने बनाए थे ऑनियन पील के और ह्यूमन चीक सेल्स के, तो हमने लार्ज रीजन देखे थे जो कि क्या है, जिसके अंदर सेल वॉल है, सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, इसके अंदर जो स्टेन है वो हल्के रंग का है, इसी पार्ट को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और इसके अंदर कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। एक सेल ऑर्गेनेल्स तो अभी हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स एनक्लोज होते हैं, आपको बताया अभी, मेम्ब्रेन्स के द्वारा, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट हैं। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। सो ये एक सेकेंड डिफरेंस है दोनों सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स के बीच में। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरसेस। जो सिग्निफिकेंस है मेम्ब्रेन्स का, उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं हम वायरस के एग्जाम्पल से। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter a living body and use its cells machinery to multiply. Viruses के अंदर किसी भी प्रकार के membranes नहीं है, जिस वजह से वो कोई भी property show नहीं करता life की, until when, जब तक ये किसी living body के अंदर नहीं आ जाता। जब ये किसी living body के अंदर आ जाता है, तब जो उसका system है, उसका जो cell machinery है, उसको use करता है और अपना multiplication करता है, और इसी प्रकार से ये अलग अलग बीमारियों को भी उत्पन्न करता है। सो ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63, इंडेक्स क्वेश्चन इज गिवन, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो आपको एक टेबल दिया गया है जिसको, जिसमें डिफरेंशिएशन है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। आपको इसको टिक भी करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपको इसके अंदर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है विद एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। सो फर्स्ट, साइज जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक का जो साइज है वो जनरली स्मॉल है, विद साइज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो जनरली लार्ज है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। सेकेंड, न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन के बारे में आपको खुद लिखना है कि न्यूक्लियर रीजन कितना है इसका। सो आपको पहले पूछा है कि प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन कैसा होगा, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज व्हाई उसको कहा जाएगा न्यूक्लियोइड। आप लिखेंगे poorly defined because of the absence of a nuclear membrane and known as nucleoid. Third, chromosome single. In eukaryotes, more than one chromosome are present. Fourth, in prokaryotic cell, membrane-bound cell organelles are absent, whereas in eukaryotic cells, membrane-bound cell organelles such as mitochondria, plastids, etc. are present. Eukaryotic cells के अंदर membrane bound structures या cell organelles पाए जाते हैं, जबकि prokaryotic cells में ये structures या organelles नहीं पाए जाते. So now next topic 5.2.5 cell organelles. So अब हम पढ़ेंगे cell organelles के बारे में one by one इनको discuss करें. Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. जितने भी सेल हैं उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है ताकि वो उसके कंटेंट्स को सुरक्षा प्रदान कर सके, इसके अलावा उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखे. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी केमिकल एक्टिविटीज करने की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स विद इन देमसेल्स. इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि प्रेजेंट है सेल के अंदर, और यही डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. These are called as organelles. This is one of the features of eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. ये एक बहुत बड़ा distinguishing factor है between eukaryotes and prokaryotes. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. कुछ जो organelles हैं उनको केवल electron microscope के अंदर में ही देखा जा सकता है. We have talked about the nucleus in a previous section. हम nucleus को previous section में देख चुके हैं. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles. So कुछ important structures हैं जो हमें अब पढ़ने, यानी कि जो main cell organelles हैं जो कि cell के अंदर present हैं, basically कौन से cells के अंदर? Eukaryotes के अंदर. उनको अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो जो इम्पोर्टेंट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ER, गॉल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स. दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल्स. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल फंक्शंस को सेल्स के अंदर परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 5.2.5 ER. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. ER क्या है? कि large network है membrane-bound tubes के और sheets. It looks like long tubules or round oblong bags. ये ऐसे दिखते हैं कि बड़ी बड़ी कोई tube-like चीजें पड़ी हुई हैं, structures पड़े हुए हैं. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. अगर इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ER के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो दोनों की मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर सेम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिनोट करते हैं कैपिटल RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिनोट करते हैं कैपिटल SER. RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स attached to its surface. जो rough endoplasmic reticulums हैं, उसको क्यों कहा गया है rough? क्योंकि जो जब उसको microscope के अंदर observe किया जाता है तो उसके पास पास कुछ ऐसे particles हैं जो कि rough दिखते हैं, और ये कारण क्या है इनका? कि उनके ऊपर जो ribosomes present हैं, उसकी वजह से वो surface rough दिखने लगती है. तो rough endoplasmic reticulum के पास ribosomes होते हैं. Please note that this point. The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. जो ribosomes हैं जो कि actively present हैं cells के ऊपर, ये site है protein manufacture का. Means cells के अंदर जो manufacturing होती है या production होता है किसका? Proteins का. वो होता है ribosomes के अंदर. Please underline कर लीजिए इस point को कि ribosomes के अंदर protein synthesis होता है. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need. जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स हैं वो एज पर द नीड ऑफ सेल्स अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं यूजिंग द ईआर यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एसईआर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, एसईआर हेल्प करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चर में, लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में, और ये इंपॉर्टेंट है सेल फंक्शन. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और ये कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सो सेल ऑर्गेनेल्स को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक आप रिविजन करिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.